अब तक आपने जाना कि कैसे एक अनजान ऑटो ड्राइवर ने मेरी माँ को बुरी तरह चोद के उसके बदन को तोड़ दिया है, जिस वजह से वह थक कर सो गई है और मैं वही बाहर से सब देख रहा था। फिर मैंने उसे नहीं बताया कि मैं इसी औरत का बेटा हूँ और मैंने उससे उस चुदाई का वीडियो भी 50 रुपये में खरीदा था। फिर उससे बात करने पे पता चला कि वो एक ऑटो वाला है और उसका नाम लाखन है। फिर उसने माँ के पानी में नशे की दवा मिला के माँ की जमकर गांड फाड़ी। फिर वहीं स्टेशन पर मुझे चाय वाले ने लाखन के बारे में काफ़ी कुछ बताया। फिर माँ वहाँ से अपनी दोस्त ममता नायक के घर चली गई। अब आगे, अगले दिन ममता ने माँ को उठाया नाश्ते के लिए तो माँ ने साथ में नाश्ता करने से मना कर दिया। ममता एक पुलिस वाले की बीवी थी जिसकी ड्यूटी के वक्त हार्ट अटैक से निधन हो गया था और उसकी जगह ममता को पुलिस विभाग में ही क्लर्क की नौकरी मिल गई थी अनुकंपन युक्ति से। फिलहाल वो सरकारी पुलिस क्वार्टर में ही रहती है अकेली। ममता, यार दीपिका तू अभी तक सो रही है, चल उठ जा, मैंने नाश्ता बनाया है, साथ में करते हैं, फिर मैं ऑफिस जाऊंगी। दीपिका, नहीं यार ममता, मेरी ना आज तबीयत सही नहीं लग रही, तो तू कर ले, मैं बाद में करूंगी, तू ऑफिस जा। ममता, यार कोई दिक्कत है क्या? दीपिका, नहीं तो क्यों पूछ रही हैं, क्या हो गया? ममता, यार अपनी हालत देख, क्या बना रखी है, और कल भी जब तू आई थी तब भी ऐसी ही कुछ थी, क्या दिक्कत है, बोल ना। दीपिका, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तू ऑफिस जा, अपन शाम में बात करेंगे। ममता, ठीक है फिर शाम में ही बात करेंगे, नाश्ता बाहर रखा है, गरम करके खा लेना, और कुछ खाने की चीज़ फ्रिज में है, और कुछ तू खुद बना लेना, नहीं तो मुझे कॉल कर देना, मैं ही कुछ भिजवा दूंगी। दीपिका, हाँ ठीक है मैं कर लूंगी सब, तू चिंता मत कर, शाम में मिलते हैं। शाम को ममता आंटी वापस घर आई तब उन्होंने और माँ ने साथ में बैठकर चाय पी और तब आंटी ने माँ की हालत के बारे में पूछा तो माँ ने शुरू से लेकर अब तक का किस्सा आंटी को सुना दिया। वो सारी बातें मैं यहाँ फिर से नहीं लिखूंगा, नहीं तो कहानी बिना वजह लंबी हो जाएगी। ममता, अब तेरी हालत कैसी है? दीपिका, पहले से बेहतर हूँ। ममता, डॉक्टर के पास चले क्या? दीपिका, अरे नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। ममता, पक्का ना? दीपिका, बताया तो पहले से बेहतर हूँ और कल तक वैसे भी ठीक हो जाऊंगी। ममता, अच्छा एक बात पूछूं? दीपिका, हाँ पूछ ले। ममता, तूने वहाँ सेक्स एंजॉय किया उस ऑटो वाले के साथ? दीपिका, सच कहूँ तो हाँ, पर दर्द भी बहुत हुआ, पिछवाड़ा तो किसी बंदर की तरह अभी भी लाल ही है। ममता, सच में? वैसे उसने कॉन्डोम तो पहना था ना? दीपिका, नहीं। ममता, तू पागल हो गई है क्या? अरे गर्भवती होने का डर ना भी हो तुझे तो यार किसी बीमारी के फैलना का तो डर होना ही चाहिए। दीपिका, क्या मतलब? ममता, अरे कोई ठिकाना है क्या, वो कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता हो? खैर जाने दे, आइंदा से ध्यान देना कि ऐसा नहीं हो, ठीक है? सवालिया लहजे में। दीपिका, हाँ यार मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। ममता, इसलिए ही तो पूछ रही हूँ, तू पागल है क्या? दीपिका, यार जब मैं घर से निकली थी ना तो इतना दिमाग खराब हो रखा था कि मैंने इन सब बातों का ध्यान ही नहीं रखा, चल छोड़ अब जाने दे। इसके बाद 2 दिन तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ को बताना चाहिए, पर उसके बाद 3रे दिन आंटी जब अपने काम से लौटकर घर आई तो उन्होंने माँ के साथ बाजार जाने का प्लान बनाया। जब दोनों सहेली तैयार हुई तो आंटी कुछ ज़्यादा ही आकर्षक लग रही थी। दरअसल उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो छुपा कम और दिखा ज़्यादा रहे थे। उन्होंने अपने पास के ब्लाउज और साड़ी जो उन्हीं की तरह अंग प्रदर्शन कर रही थी वो निकालकर माँ को भी दी और पहनने लगाया, पर माँ को ये ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। दीपिका, यार इसमें कुछ ज़्यादा प्रदर्शनी नहीं लग रही हैं क्या? ममता, आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। दीपिका, कौन पहनता है ऐसे कपड़े? ममता, अरे सभी पहनते हैं, किसी भी फिल्मी हीरोइन को देख ले। दीपिका, यार पर तू ही देख, ये कोई पहनने लायक है क्या? ममता, अच्छा ये बता इसमें बुराई क्या है? दीपिका, यार ये ब्लाउज ही देख ले, चाहे आगे से कहो या पीछे से, कुछ भी तो नहीं छुपा रहा है। ममता, इसे डिपनिक बैकलेस ब्लाउज कहते हैं। दीपिका, पर हम ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? साड़ी भी तूने जबरदस्ती कितने नीचे बांधने लगाई है, ऐसा लग रहा है कोई ध्यान से देखेगा तो उसे मेरे नीचे के बाल दिख जाएंगे, और इसमें तूने मुझे ब्रा भी नहीं पहनने दी। ममता, अरे हो गया अब, बस भी कर ले, अच्छी लग रही है तू, और ऐसा पहनने का कुछ कारण है। दीपिका, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। ममता, नहीं, अंदर हैं। दोनों खिलखिला के हंसने लगे। दीपिका, अरे बताना क्या कारण है। ममता, देख वहाँ बाजार में ज्यादातर आदमी ही होंगे। दीपिका, हाँ तो। ममता, अरे तो उन लोगों को अपन थोड़ा सा जिस्म की नुमाइश कर देंगे और बदले में सब्जियों का दाम अपने हिसाब से देंगे। दीपिका, ऐसा होता है क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा। ममता, क्योंकि तूने न तो इस बात पे ध्यान दिया और न ही कोशिश करी। अगर करती तो तुझे पता चल जाता। चल अब मैं ताला लगा दूँ, फिर अपन चले, यही 300 गज होगा, पैदल ही पहुँच जाएंगे। ठीक है ना? दीपिका, हाँ ठीक है। दोनों साथ साथ में बाजार पहुँचते हैं। वहाँ पर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी। अलग अलग सब्जियों के दुकान एक बगल में एक लगे हुए थे और सभी अपनी अपनी सब्जियों को आवाज़ लगा लगा कर बेच रहे थे। माँ का ध्यान बाजार से ज़्यादा तो ममता आंटी पे था। वो देखना चाहती थी कि जो आंटी ने उन्हें बताया था क्या ऐसा सच में हो सकता है। माँ ने देखा कि आंटी वहीं एक सब्जी वाले के पास झुककर सब्जियां देखने लगी। शायद वो जानबूझकर उस सब्जी वाले को अपने स्तन की नुमाइश कर रही थी ताकि वो आंटी को सब्जी के भाव में छूट दे। ममता, भैया आलू कैसे दिए? सब्जी वाला, ले लीजिए मैडम, आपसे ज्यादा थोड़े ना लेंगे। ममता, अरे भैया पहले भाव तो बताए, फिर पटेगा तो लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मुस्कुराते हुए। सब्जी वाला, क्या मैडम, जो देना है दे देना, आंटी के स्तनों को घूरते हुए। ममता, 2 किलो नाप दीजिए, फिर, मुस्कान के साथ। सब्जी वाला, और क्या नाप दूँ? ममता, टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला, अरे मैडम आप तो बस जो भी चाहिए बता दीजिए, सब और सब आपके हिसाब से दे देना, आपको थोड़ी ना मना करेंगे, कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए। ममता, 2 किलो टमाटर भी नाप दीजिए फिर। सब्जी वाला, और कुछ मैडम? ममता, नहीं भैया, कितना हुआ सबका? अपना पल्लू सीने से हटा के पस ढूंढने का नाटक करते हुए। सब्जी वाला, वैसे तो 150 हो गए, पर आप 130 ही दे दो, पल्लू के बगल से स्तनों को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए। ममता, नहीं भैया मैं तो 100 ही दूंगी, झुककर अपने उभारों को और ज्यादा प्रदर्शित करते हुए। सब्जी वाला, ये तो कम हो जाएगा मैडम। ममता, क्या भैया आपने तो बोला था जो देना है दे देना, अब आप ऐसे मत करिए, अभी भी उभारों की नुमाइश कम नहीं करते हुए। सब्जी वाला, ठीक है दे दीजिए, उभारों को देखकर मुंह से लार टपकाते हुए। ममता, देखा बोला था ना ऐसे काम बन जाता है, धीरे से माँ के कान पास फुसफुसाते हुए। दीपिका, हाँ यार मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था और देखा भी नहीं। ममता, चल अब उधर भीड़ तरफ थोड़ा मजा भी करेंगे और सब्जी भी लेंगे, और तू भी थोड़ी झुक के दिखा देगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। दीपिका, यार मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, पर चल कोशिश करती हूँ, इसमें मजे तो है। ही करके दोनों साथ में हंसते हुए। फिर दोनों पास में ही एक दूसरी सब्जी की दुकान के पास पहुँची। यहाँ भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, वहाँ जाके ममता आंटी ने अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिया। इस बार माँ भी उनका बराबर साथ दे रही थी, जैसे जानबूझकर झुकना, पल्लू और बालों को बगल में सरकाना, पस चेक करने के बहाने अपने उभारों को हाथ लगाना। वहाँ काफ़ी भीड़ थी और मर्दों की नज़र अब सब्जी से हटकर इन दो कड़क औरतों के हुस्न पर अटकी थी। तभी भीड़ का फ़ायदा उठा के किसी ने माँ के कूल्हों को सहला दिया। माँ थोड़ी सी असहज महसूस करने लगी, क्योंकि इसके पहले उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, पर उसी समय उनकी नज़र आंटी पर पड़ी। वहाँ एक आदमी मस्त आंटी के पीछे खड़े होकर उनके कूल्हों को मसल रहा था, पर आंटी कुछ भी नहीं बोल रही थी। शायद आंटी का माँ को मजे करेंगे बोलने का यही मतलब होगा। आंटी को ऐसे ही अपने कूल्हे दबवाते देखकर शायद अब माँ भी गर्म होने लगी थी। तभी किसी ने पीछे से माँ के कूल्हे को कस के पकड़ के रगड़ दिया, पर इससे पहले कि माँ देख पाती कि कौन था, वो अनजान हाथ अब हट चुका था। पर माँ अब बहुत ज्यादा शर्म महसूस कर रही थी, क्योंकि ये कोई चार दीवारी में बंद नहीं बल्कि भीड़ से भरा हुआ खुला बाजार था। तभी ममता आंटी आई और माँ के कान में बोली कि वो अभी आएगी, थोड़ी देर से उनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। बस इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गई। माँ बस उन्हें भीड़ में एकदम से गायब होते देख पाई। तभी किसी ने माँ के कान के पास आकर कहा कि उन्हें माँ से कुछ बात करनी है, ज़रा उनके पीछे चलो। माँ को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, तो बस उस आदमी के पीछे चली गई। देखने में वो आदमी कुछ 5-8 का कद, गठिला बदन, रौबदार आवाज, चेहरे पे दाढ़ी और मूछे, आधा गंजा, शायद धूप में काम करने की वजह से रंग थोड़ा काला, लगभग 40 की उम्र का लगता था। कुछ ही समय बाद माँ और वो अनजान शख्स दोनों बाजार के बाहर आ चुके थे। शाम के 7 बजे के लगभग का समय था, इसलिए इधर अंधेरा भी हो गया था और इधर कोई लाइट भी खास थी नहीं। सामने कुछ पुराने से क्वार्टर थे जो अब शायद उपयोग में नहीं लिए जाते थे। उनकी हालत देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था ये पुराने पुलिस क्वार्टर थे। अब उस आदमी ने माँ का हाथ पकड़कर माँ को एक क्वार्टर में खींच लिया। माँ कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने अपने होंठों को माँ के होंठों पे रखकर चूमने लगा। अभी तक तो माँ काफ़ी डरी हुई थी, उन्हें उनके साथ ऐसा कुछ होने का अंदाज़ा भी नहीं था, पर लगातार होंठों के चुंबन के चलते वो गर्म हो चुकी थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उस आदमी ने माँ के ब्लाउज को खोलकर माँ से अलग कर दिया। इस समय माँ ऊपर से पूरी तरह नंगी हो चुकी थी पर नीचे से पूरे कपड़े पहने हुई थी। वो बस माँ के होंठों को चूम रहा था और अपने एक हाथ से माँ के स्तनों को जोर जोर से निचोड़ रहा था और माँ बस ओ आ आ हो की आवाज़ और तेज तेज सांस ले रही थी और एक कड़क मर्दाना हाथों को अपने स्तनों पे महसूस कर रही थी। उस अनजान शख्स ने बिना देर किए माँ की साड़ी को उनके जिस्म से अलग कर दिया। अब माँ ने नीचे सिर्फ पेटीकोट पहन रखा था और उसके अंदर पैंटी। अगले ही पल उस आदमी का हाथ माँ की छूत से खेल रहा था, तब माँ को एहसास हुआ कि उनका पेटीकोट भी उतार दिया गया है। फिर उसने माँ को लंड चूसने का पूछा तो माँ ने ना में सिर हिला कर मना कर दिया, तो इस शख्स ने माँ को वही जमीन पर माँ की गिरी हुई साड़ी के ऊपर लेटा दिया और जल्दी से माँ की पैंटी भी अलग कर दी। अब माँ ने महसूस किया कि दो उंगलियाँ उनकी छूत के अंदर चल रही है, और तब उस आदमी ने कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही गीली लग रही हो, और फिर उसने माँ की पैंटी से माँ की छूत को पोंछ कर सुखाया और अपने लंड माँ की छूत में घुसा दिया। माँ देख तो नहीं पाई कि कितना बड़ा है, पर जब वो माँ की छूत की गहराई में पहुँचा तो एक अंदाज लगा कि लगभग 7 इंच लंबा और 3 इंच मोटा होगा। छूत के सूखे होने की वजह से माँ की एक चीख निकल गई, आह, उस आदमी ने कहा, क्या कर रही हो, आवाज़ सुनकर और भी लोग आ जाएंगे। फिर उस आदमी ने बिना देर किए माँ की छूत में तेज तेज धक्के मरने शुरू कर दिए। शायद 1 मिनट ही धक्के लगाने के बाद वो रुक गया और बोला, कितना पानी छोड़ रही हो, फिर गीली हो गई, और फिर से माँ की पैंटी से छूत को पोंछ कर सुखा दिया और फिर लंड को वापस छूत में एक ही झटके में घुसा दिया और दनादन धक्के मारने लगा। अब माँ के मुँह से सिसकारी निकल रही थी, सीसी थोड़े धीरे करो, दर्द हो रहा है। अब फिर उसने 2 मिनट ही चौदा होगा कि फिर लंड बाहर निकाल लिया और बोला, तू सच में कितना पानी छोड़ रही है, और फिर से माँ की छूत को पोंछ कर चोदने लगा। लगभग 15 मिनट तक वो माँ को चोदता रहा और बीच बीच में लंड निकाल कर पोंछता रहा। माँ को अब चुदाई में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी सूखी छूत में बार बार लंड घुसाने से वो अंदर से जलन करने लग गई थी। माँ ने उस आदमी को मना करना शुरू कर दिया, मुझे बहुत जलन हो रही है, प्लीज़ अब झड़ जाओ, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही उसने और 10 मिनट माँ की जोरदार चुदाई करी और अपना माल माँ की छूत में झड़ा के अपना लंड निकाल लिया। माँ को अब बहुत तेज जलन होने लगी थी, जैसे किसी ने रोड को गर्म करके उनकी छूत अंदर से जला दी हो। फिर उस आदमी ने 5 मिनट तक माँ के स्तन को चूसा और निचोड़ा और बोला, चल औधी हो जा, मैं तेरी गांड मरूंगा, पर माँ दूर हट गई और मना करने लगी कि नहीं, मैं वहाँ नहीं करवाऊंगी। उस आदमी ने माँ से कहा, क्यों नहीं मरवाएगी अपनी गांड? तब माँ ने कहा कि मुझे नहीं करवाना, कुछ दिन पहले एक आदमी ने किया था तो मुझे बहुत दुख रही थी, 3-4 दिन तो मैं ठीक से लैट्रिन भी नहीं जा पाए और तो और इतनी तकलीफ हो रही थी कि ऐसा लगा मुझे बवासीर हो गया है, इसलिए वहाँ नहीं। फिर उस आदमी ने कहा, आजकल तो सभी औरतें गांड मरवाती है, सबको मज़ा आता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी माँ की चुदाई की कहानी का एक और भाग। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो शायद इसके आगे भी लिख दूँ। और जो लोग सोच रहे होंगे कि ममता आंटी के घर से लेकर बाज़ार में चुदाई तक का किस्सा मुझे कैसे पता चला, उन्हें बता दूं कि माँ जब घर लौटकर आई थी तब उन्होंने ये सारी बात कीर्ति आंटी को बताई थी, तब मैंने छुपकर सुन ली थी।